ईशानी का एक्सीडेंट हुआ था। उसे होश आया तो वो एक अनजान जगह पर थी। अनजान जगह पर होने तक तो ठीक था, लेकिन जब ईशानी ने देखा कि वो पाकिस्तान की आर्मी के बीच फंस चुकी है, तो ईशानी डर के मारे बेहोश हो चुकी थी। ईशानी को जब वापस होश आया और उनके आर्मी कैप्टन ज़ैन इकबाल ने ईशानी से उसका एड्रेस पूछा, तो ईशानी ने डरते हुए मुंबई का नाम लिया। जैसा कि ईशानी को डर था, उसे एक जासूस समझा जा रहा था। ज़ैन ने तुरंत ही ईशानी के माथे पर अपनी रिवॉल्वर तान दी थी। ज़ैन के मासूम चेहरे पर सख्त भाव थे। वो कड़क अंदाज में बोला, चुपचाप अपने दोनों हाथ ऊपर करो और बाहर की तरफ चलो। किसी भी तरह की हरकत करने की कोशिश भी की तो खुदा कसम हम गोली चलाने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। डर के मारे ईशानी के चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक पड़ी। उसने शांत लहजे में कहा, देखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं कोई जासूस नहीं हूं जो आप मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। मुझे तो पता भी नहीं कि मैं पाकिस्तान में आ गई हूं। सुबह आपकी यूनिफॉर्म देखी तब एहसास हुआ। अच्छा, आपको पता नहीं आप पाकिस्तान में आ गई, और इस बात का आपको अच्छे से पता है कि आपको जासूस समझा जा रहा है। हम आपकी इनोसेंट शक्ल पर नहीं जाने वाले हैं। चेहरे अक्सर धोखे देते हैं मोहतरमा, ज़ैन ने जवाब दिया। अरे वो तो मैं LLB की स्टडी कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि क्या कैसे होता है। अब अचानक आप अपने दुश्मन देश में पहुँच जाओगे तो आपको शुभचिंतक तो समझा नहीं जाएगा ना। यकीन करो, मेरा एक्सीडेंट हुआ था। आँख खुली तो मैं तुम्हारे सामने थी, ईशानी ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा। ईशानी की नज़र फिर ज़ैन के नेम प्लेट पर गई। उसे पढ़कर ईशानी ने कहा, देखिए मिस्टर ज़ैन इकबाल, प्लीज़ मुझे आर्मी के पास मत लेकर जाइए। आप जानते हैं वो मेरे साथ कैसा सलूक करेंगे। अगर मैं सच भी बोलूंगी तो झूठ समझ जाएगा। मुझे जेल में डालकर मेरे साथ टॉर्चर किया जाएगा, और आई रियली डोंट डिजर्व दिस। मैं प्रूव कर सकती हूँ कि मैं कोई जासूस नहीं हूँ। ज़ैन अब तक ईशानी की बात शांति से सुन रहा था। उसकी बातों में सच्चाई नज़र आ रही थी, पर फिर भी वो किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकता था। ज़ैन ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर आपके पास इस तरह का कोई सबूत है तो आप आर्मी को दिखा दीजिएगा। आपकी सच्चाई साबित होने के बाद आपको आपके देश हिफाजत से पहुंचा दिया जाएगा। ज़ैन ईशानी की बात मानने को तैयार नहीं था। ईशानी ने नम आंखों से कहा, अब जब आपने फैसला कर ही लिया है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, पर आप अच्छे से जानते हैं कि वहां क्या होगा। मैंने प्रूफ कर भी दिया तब भी वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। लगता है आप इंडियंस मूवी कुछ ज़्यादा ही देखती हैं, जहां हमारी इमेज खराब दिखाई जाती है। हम वैसे भी नहीं हैं जैसा आप अपनी फिल्मों और ड्रामा में हमें जाहिर करते हो, ज़ैन ने तिरछा मुस्कुराकर कहा। उसने अभी भी ईशानी की तरफ गन पॉइंट कर रखी थी। ठीक है, मैंने तो मूवीज़ और ड्रामा में देखा होगा, पर आप तो सच में जानते हैं ना कि वहाँ जाकर मेरे साथ क्या होगा। पहले भी मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, थोड़ा और बुरा हो जाएगा, ईशानी ने गहरी सांस लेकर उदास चेहरे के साथ कहा। ज़ैन चुपचाप उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। वो उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं थी, दिखाने में भी काफ़ी मासूम लग रही थी, पर अगले ही पल उसे ख्याल आया कि इसी तरह की लड़कियों को अक्सर जासूस बनाकर पाकिस्तान में भेजा जाता था। वो खुद भी तो यही करते थे, कम उम्र के मासूम और खूबसूरत दिखने वाली लड़कियों को इंडिया में जासूस के तौर पर भेजते थे। ज़ैन अपनी सोच में गुम था, तभी ईशानी ने कहा, सोच क्या रहे हो, चलिए चलते हैं। ईशानी के कहने पर ज़ैन अपने ख्यालों से बाहर आया। एक पल के लिए उसे लगा कि ज़ैन उसे जाने देगा, पर ज़ैन ने उसे सामने की तरफ चलने का इशारा किया। वो गन पॉइंट करके उसके पीछे चल रहा था। ईशानी के चेहरे पर घबराहट के भाव थे। उसने अपने मन में कहा, हाँ बस अब यही देखना बाकी रह गया था। इससे अच्छा तो खुराना मेंशन था, जो कि किसी दुश्मन देश से कम नहीं था, पर एटलीस्ट वहाँ मेरा कोई अपना तो था। रुद्राक्ष मेरी हेल्प करते थे, पता नहीं इंडिया में क्या चल रहा होगा और रुद्राक्ष ने मुझे ढूंढा होगा भी या नहीं। मॉम कैसी होगी, क्या उन्हें पता है कि मैं यहाँ आकर फंस गई हूँ। ईशानी के दिमाग में इस वक्त काफ़ी कुछ चल रहा था। वो उस जगह से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। ऊपर से ज़ैन भी उसके सुनने को तैयार नहीं था। उसने उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं किया और सीधे उसे लेकर आर्मी कैंप जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष हॉस्पिटल में था। रुद्री से बात करने के बाद वो अपने काम निपटाने में लग गया था। रुद्राक्ष रुद्री के सामने नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो बार बार ईशानी के बारे में पूछ रही थी। रात को डिनर के वक्त रुद्राक्ष खाना लेकर जब रुद्री के पास पहुंचा तो मोक्ष वहीं पर था। रुद्राक्ष को देखते ही रुद्री ने जल्दी से कहा, रुद्राक्ष अच्छा हुआ तुम आ गए बेटा, मैं कब से मोक्ष से बोल रही हूँ कि मेरी ईशानी से बात करवा दे, लेकिन ये मेरी सुन ही नहीं रहा है, बस बार बार रेस्ट करने की रट लगा रखी है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रुद्री की बात सुनकर रुद्राक्ष ने मोक्ष की तरफ देखा, जो चेहरे से थोड़ा परेशान लग रहा था। मोक्ष ने गहरी सांस लेकर कहा, अब आप ही समझाइए इन्हें, डॉक्टर ने इन्हें ज्यादा बात करने से मना किया है, फिर भी ये कब से बोले ही जा रही है। रुद्राक्ष रुद्री के पास आया और वहीं एक चेयर पर बैठते हुए बोला, ठीक ही तो कह रहा है ये, आपको ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, ईशानी से बात बाद में भी हो जाएगी, डॉक्टर ने उसे भी रेस्ट करने के लिए ही कहा है। लेकिन तुमने तो कहा था कि उसे ज्यादा चोट नहीं लगी है। ठीक है, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, बस मुझे उसकी शक्ल दिखा दो ताकि तसल्ली हो जाएगी कि वो ठीक है, रुद्री ने जिद करते हुए कहा। रुद्राक्ष ने कुछ पल रुककर जवाब में कहा, अच्छा ठीक है, पहले आप आराम से खाना खा लीजिए और दवाइयां ले लीजिए, उसके बाद मैं आपकी ईशानी से बात करवा दूंगा। रुद्राक्ष के हाँ कहते ही रुद्री खुश हो गई थी, तो वहीं मोक्ष हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। वो मन ही मन बोला, भाई मॉम को बात करने के लिए हाँ बोल रहे हैं तो क्या ईशानी मिल गई है? ओ गॉड, प्लीज ऐसा ही हो। रुद्राक्ष अपने हाथों से रुद्री को खाना खिलाने लगा। फिर खाना हो जाने के बाद रुद्राक्ष जब दवाई देने लगा तो रुद्री ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं तुम मेरे साथ चीटिंग नहीं कर सकते, तुमने मुझे बोला था खाना खा लेने के बाद मेरी ईशानी से बात करवाओगे। मैंने कोई चीटिंग नहीं की, रुद्राक्ष कंधे उचका कर बोला, मैंने आपको कहा था कि खाना खाने और मेडिसिन लेने के बाद ही आप बात कर पाएंगी। लेकिन मेडिसिन लेने के बाद मुझे नींद आने लगती है, तुम्हें अच्छे से पता है, तो हो गई ना चीटिंग, रुद्री ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा। पर रुद्राक्ष ने उसकी एक नहीं सुनी, रुद्राक्ष ने जबरदस्ती रुद्री को दवाइयां दे दी थी। दवाइयां लेने के कुछ ही पलों में रुद्री की आंखें भारी होने लगी और वो सो गई थी। मोक्ष के दिल में जो कुछ देर के लिए उम्मीद जगी थी वो तुरंत ही टूट गई थी। उसने उदास चेहरे के साथ कहा, मुझे लगा आपको ईशानी मिल गई है इसलिए आपने बात करवाने के लिए हाँ कही है, आज नहीं तो कल वो मिल ही जाएगी, वो बिल्कुल ठीक है, रुद्राक्ष ने धीमी आवाज में जवाब दिया। तो तब तक आप मॉम से झूठ बोलने वाले हो? ऐसे कब तक सब उनके सामने छुपा कर रखोगे? उन्हें सच का पता चला तो वो बहुत हर्ट होगी, मोक्ष ने रुद्राक्ष की आंखों में देखकर कहा। मोक्ष का कहना भी सही था। रुद्राक्ष ने कुछ पल उसके बारे में सोचकर जवाब में कहा, ठीक है फिर कल बता देंगे, वैसे भी कल मॉम को डिस्चार्ज मिल रहा है और मैं उन्हें हमारे नए घर में लेकर जाना चाहता हूँ। नया घर? और वो कब लिया आपने? मोक्ष ने हैरानी से पूछा।
जब तुम मॉम की सेवा पाने में बिजी थे बस तभी लिया था। मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं हमेशा के लिए यहाँ सेटल होने वाला हूँ। दीपिका आंटी भी हमारे साथ रहेगी क्योंकि ईशानी फिलहाल के लिए गायब है। उनका ईशानी के अलावा कोई नहीं था तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका ख्याल रखें। मैंने सारे अरेंजमेंट करवा लिए हैं, आई होप तुम बाकी चीज हैंडल कर लोगे, रुद्राक्ष ने काफी शांति से कहा और बाहर जाने लगा। मोक्ष उससे काफी कुछ पूछना चाहता था लेकिन रुद्राक्ष उसके लिए उसके पास रुका नहीं। रुद्राक्ष के जाते ही मोक्ष ने गहरी सांस लेकर कहा, ये इतना शांत कैसे रह सकते हैं? ईशानी गायब है, वो गायब भी नहीं है, इस दुनिया से जा चुकी है, फिर भी सच एक्सेप्ट करने के बजाय एक आशिक की तरह उसे ढूंढने में लगे हुए हैं। मोक्ष को रुद्राक्ष के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसने एक नज़र रुद्री की तरफ देखा जो बेफिक्री से सो रही थी। अब तो भगवान जाने कल क्या होगा, मोक्ष ने खुद से कहा और फिर वहीं पास लगे बेड पर जाकर लेट गया। मोक्ष की आंखें बंद करते ही उसके सामने ईशानी का चेहरा आ रहा था। वो सब लम्हे जो उन्होंने साथ बिताए थे, ईशानी के बारे में सोचकर मोक्ष की आंखें नम होने लगी। उसने अपने आंखों के कोनों को साफ करके भरी आवाज में कहा, अभी तो सब तुम्हारी लाइफ में सही होने लगा था, भाई को सच्चाई पता चली थी और वो तुमसे माफी मांगना चाहते थे, तुम इतनी जल्दी क्यों चली गई? वो कब से अपने दिल में दर्द छुपा कर बैठे हैं। जानता हूं तुम जिंदा नहीं हो पर दिल यही चाहता है कि तुम जहां भी हो ठीक रहो, आज नहीं तो कल हमारे पास आ जाओ ताकि हमारी लाइफ पहले की तरह अच्छी हो जाए। मोक्ष ने गहरी सांस ली और फिर से लेट गया। वहीं दूसरी तरफ ईशानी जैन के साथ थी। जैन उसे आर्मी कैंप की तरफ ले जा रहा था। उस छोटे से घर से बाहर निकालकर उसने महसूस किया कि वो घर जंगलों में था। आर्मी कैंप उससे थोड़ा दूर था। चलते हुए ईशानी ने धीरे से कहा, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं बेगुनाह हूँ, फिर तुम क्यों जानबूझकर मुझे मुसीबत में डाल रहे हो? मैंने यहाँ किसी की जान नहीं ली है जो तुम मुझे आर्मी के पास लेकर जा रहे हो। जान नहीं ली है लेकिन हो सकता है आने वाले कल में आप किसी की जान ले लें। हम इंतजार थोड़ी ना करेंगे कि कब आप अपना अगला कदम उठाएंगे। बेगुनाह हो तो साबित कर लेना और निकल जाना, जैन ने जवाब दिया। वो अभी भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। ईशानी पिछले आधे घंटे से उसे समझाने की कोशिश कर रही थी लेकिन जैन उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। अब ईशानी को गुस्सा आने लगा था। वो जैन की तरफ पलटी और चिढ़कर बोली, देखो ये अच्छा होने का दिखावा मेरे सामने मत करो, मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है, तुम्हें मुझसे ज्यादा पता है कि मेरे साथ वहां जाने के बाद क्या होगा। बार बार झूठी तसल्ली मत दो कि मेरी बेगुनाही साबित होने के बाद भी वो मुझे छोड़ देंगे। जब तुम ही नहीं जाने दे रहे हो तो वो कहां से छोड़ देंगे? मैं जासूस भी नहीं हूं तो भी वो मुझे जासूस साबित करेंगे, मेरे साथ टॉर्चर करेंगे और ना जाने कितने सालों तक मुझे जेल में कैद करके रखेंगे। मेरी हालत देख रहे हो तुम, थोड़े दिनों पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं यहां आकर बेहोश होने का ड्रामा नहीं कर रही थी। ईशानी ने अपनी पूरी भड़ास निकाल दी थी। उसे लगा अब तो ज़ैन का दिल पसीच ही जाएगा, लेकिन ज़ैन इस सख्त अंदाज में बोला, हमारा वक्त ज़ाया मत कीजिए, चुपचाप सामने की तरफ पलटिए और सीधे चलिए, वरना हमें आपको शूट करना होगा। ईशानी ने गहरी सांस ली और फिर सामने की तरफ चलने लगी। बस थोड़ा ही रास्ता बचा था जब ज़ैन ईशानी को लेकर आर्मी कैंप पहुंचने वाला था। ईशानी के दिल की धड़कनें तेज थीं, वो अच्छे से जानती थी उसके साथ वहां क्या होने वाला था। एक मुसीबत से निकलने के बाद ईशानी दूसरी नई मुसीबत में फंस चुकी थी। क्या ईशानी पाकिस्तान आर्मी के सामने अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी और रुद्राक्ष के पास वापस पहुंच जाएगी, ये तो अब अगले पार्ट में पता चलेगा। पढ़कर कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट पर मिलते हैं।